हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। और स्कंद है 9, अध्याय है 6, श्लोक संख्या 3 और 4। बोर्ड पर जो है 4 नंबर श्लोक लिखा है, हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। शुवतः तू मनो जग्ये इश्वाकुः घ्राणतः सुतः तस्य पुत्रशत ज्येष्ठा विकुक्षे निमि दंडका शुवत्सु सुमनो जग्ये इश्वाकुर् घ्राणतः सुतः तस्य पुत्रशत ज्येष्ठा विकुक्षे निमि दंडका शुवत्सस्तु मनोर्यज्ञे इश्वाकुर्घ्नत्सुतः तस्य पुत्रशत ज्येष्ठा विकुक्षे निमि दंडका शुवत्सु मनोर्यज्ञे इश्वाकु ग्रणात्सुतः तस्य पुत्रशता ज्येष्ठा विक्षुक्षि निमिदण्डकः। शुवतः छींकते समय तो लेकिन मनो मनु के यज्ञ उत्पन्न हुआ इश्वाकुः इश्वाकु नामक घ्राणतः नथुनों से सुतः पुत्र तस्य इश्वाकु के पुत्र शत 100 पुत्र ज्येष्ठा प्रमुख विक्षुकी विक्षुक्षी ये नामक निमि नामक दंडका नामक। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मनु का पुत्र इश्वाकु था। जब मनु छींक रहे थे तो इश्वाकु उनके नथुनों से उत्पन्न हुआ था। राजा इश्वाकु के 100 पुत्र थे जिनमें से विकुक्षी निमि तथा दंड का प्रमुख थे। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि भागवत में इश्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना जाता है, किंतु यह एक सामान्यकरण है। यहाँ यह विशेष रूप से बतलाया गया है कि इश्वाकु का जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में ये नया अध्याय शुरू हुआ है, सोभरी मुनि का पतन, जिसके विषय में हम लोग आगे चलेंगे पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग 2 श्लोक हैं जिसमें 3 और 4, 3 भी छोटा सा लिया गया है जिसमें छोटा सा प्रपट था। रथीतर की पत्नी से जन्म लेने के कारण ये सारे पुत्र रथीतर के वंशज कहलाए, किंतु अंगिरा के वीर से उत्पन्न होने के कारण वे अंगिरा के वंशज भी कहलाए। रथीतर की संतानों में से ये पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध थे क्योंकि अपने जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि मनु का पुत्र इश्वाकु था। जब मनु छींक रहे थे तो इश्वाकु उनके नथुनों से उत्पन्न हुए थे। राजा इश्वाकु के 100 पुत्र थे जिनमें से विक्षुक्षी निमि तथा दंडका प्रमुख थे। तो श्रीमद् भागवतम में हम लोगों को वो इतिहास मिलता है जो हमारे स्कूल के बुक्स में नहीं मिलता हमको पढ़ने के लिए। हमारी पुस्तकों में लगभग 1,000-1,500-2,000 साल तक का इतिहास, उसमें भी मारकाट लड़ाई बिल्कुल, कि इस राज्य को उसने जीता, उस राज्य को इसने जीता। और उसी इतिहास के माध्यम से आज देखते हैं कि पूरे समाज में कलह भी मचे हुए। किसी को लगता है कि पहले सब कुछ हमारे पास था, ब्रिटिशर्स ने 200 साल यहाँ पर राज किया, पूरे विश्व में राज किया लगभग, और बाद में वहाँ पर अपने अपने सब कुछ फैला दिया उन्होंने राजा सिस्टम को। और उसके बाद 700-800 साल मुगल आए और मुगलों ने भी राज किया। फिर अब मुगलों के जाने के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस देश को दूसरे ढंग से बांट दिया। आज उनको लगता है कि सब कुछ हमारे पास था, हमने सब खो दिया, तो यह सब तो हमारे पास होना चाहिए था। और जो पहले से लोग रहते थे छोटे छोटे राज्यों में, उनको लगता है ये सब तो हमारा था। तो इस इतिहास को हम लोग जब देखते हैं सुनते हैं तो कई लोग गर्व महसूस करते हैं, कोई लोग क्षमा महसूस करते हैं कि हम उस समय नहीं थे, ये हो जाता और वो हो जाता। तो इतिहास जो हमारा को पढ़ाया जाता है वो केवल छोटा सा इतिहास है, लेकिन हम लोगों को श्रीमद् भागवतम से पूरे के पूरे ब्रह्मा जी के 14 मतलब एक दिन के जो 14 मनु हैं उनका भी इतिहास प्राप्त होता है। और हर मनु में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, और इस प्रकार जो है ये नीचे आता है 14 मनु, सॉरी एक उसमें 14 वो आते हैं। तो इस इतिहास में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग आजकल के इतिहास से जोड़कर देखते हैं तो हम लोगों को खाली वो इतिहास मालूम जो हमने पुस्तकों में पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा अधिक पीछे इसलिए नहीं जाते लोग क्योंकि फिर धार्मिक हो जाता है सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा पीछे चले गए तो वो सारी प्रिडिक्शंस, वो सारे ऐसे ऐसे क्रियाकलाप लोगों को दिखने लगेंगे जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ें पढ़ाते नहीं, क्योंकि अगर वैसी चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसके लिए उनको भी ज्ञान चाहिए, उनको भी उस प्रकार का ज्ञान चाहिए होगा तभी तो पढ़ा पाएंगे। इसलिए शुरू में जब लोग गुरुकुल में जाया करते थे तो गुरुओं के पास ये सारी शिक्षा होती थी वैदिक ज्ञान की, और ठीक ढंग से मार्गदर्शन भी करते थे लोगों का। लेकिन आजकल के समाज में हम लोग, आजकल के जो अध्यापक हैं स्कूल्स हैं उनमें हम लोग इस तरह की आशा नहीं कर सकते कि वो लोग जो हैं हम लोगों को वो इतिहास पढ़ाएं जो वास्तव में पुराणों में लिखा है। अगर किसी ने पढ़ा दिया या कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दे दी तो अगले दिन वो उस पढ़ाए हुए इतिहास का प्रकोप देखता है, या तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अब आउटडेटेड मानी जाती हैं, इस इतिहास को आउटडेटेड माना जाता है कि ये अब हमारे लिए नहीं है, ये तो कोई ऋषि मुनि बोलकर चले गए, है ना, इलॉजिकल बातें करके चले गए और उसको हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। वो बात अलग है कि ये लोग जो थ्योरीज पढ़ाते हैं वो भी लॉजिकल है कई जगहों पर, लेकिन फिर भी पढ़ाई जाती है क्योंकि आजकल मान्य है वो सब चीज़ें। तो क्यों लगती है उनको इलॉजिकल? क्योंकि उसमें उस इतिहास में हम देखते हैं ऐसी ऐसी मुख्य घटनाएं हुई हैं, इतने चमत्कार हुए हैं जो कि आजकल हम जैसे लोगों के द्वारा समझना बहुत मुश्किल है। हमारा ब्रेन हमें अलाउ नहीं करता उतना चिंतन करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए। ऐसे ऐसे क्रियाकलाप हुआ करते थे। आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो इसी युग में मतलब कलयुग में ही पिछले कुछ समय पहले हुआ करती थी, लेकिन आज उस पर विश्वास करना मुश्किल है। कुछ याद आती हैं कुछ चीजें ऐसी बताएं, किसी कुछ याद आता है इस तरह का जो कुछ वर्षों पहले या कुछ दशकों पहले शताब्दियों पहले घटना घटी हो लेकिन आज उसको अचंभा माना जाता है और विश्वास नहीं कर सकते उस पे लोग? रवि कह रहे सत्संगों में और मंदिरों में अपार भीड़ दिखा करती थी और आजकल नहीं दिखती। ठीक है जी, यूनाइटेड फैमिलीज हुआ करती थी, कंबाइंड फैमिलीज हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो लोग आने वाले समय में इसको अचंभा मानेंगे, आश्चर्य की बात करेंगे, क्या बात कर रहे हो, एक परिवार में इतने लोग रहा करते थे, मतलब झगड़ा नहीं होता था क्या, लड़ाई नहीं होती थी, आज दो लोग रहते हैं तो लड़ाई होती है। तो ये अचंभा है, आश्चर्य लोगों को लगता है। और क्या घटना होती थी? आजकल व्हाट्सएप पे मिलते हैं। मतलब लोग अगर 4 से 10 लोग पार्क में पेड़ के नीचे खड़े मिलेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इनका कोई ग्रुप नहीं है क्या व्हाट्सएप पे, है ना? तो बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे कि लोग इकट्ठे मिलकर बैठा करते थे, चौपाल में बैठते थे, पेड़ों के नीचे बैठा करते थे, रामायण और महाभारत की चौपाइयां गाया करते थे। ये सब इतिहास हो गया बहुत पुराना। जबकि कुछ दशकों पहले थे।
पहले आप हमसे बहुत प्रेम था,
पहले पहले उन्हें कोर्ट खाली रहती है, कोर्ट भरी रहती है डाइवोर्स के लिए।
पहले अगर किसी परिवार से किसी बच्चे का डाइवोर्स हो जाता था या वापस आ जाती थी लड़की, तो पूरे गांव में पूरे चर्चा होती थी, बड़ा नाक कहते थे कट गई, लड़की वापस आ गई। और आज एकदम उल्टा है, आज वो परिवार ढूंढना पड़ता है कि कहाँ सबूत है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ऐसी स्थिति है विदेशों की तरह, यहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे घटनाएं बढ़ रही हैं और आगे कैसे बढ़ता जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स भी हम देखते हैं जो बनाए गए थे पहले। आप जब कभी पुराने साउथ इंडिया के मंदिरों में जाते हैं, उन मंदिरों का जब दर्शन करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो क्या सुंदर ढंग से ऐतिहासिक मंदिर अभी भी बरकरार हैं। जितने बड़े पत्थर में हमारे एक दो कमरे का पूरा पत्थर लग जाता है जिस साइज में, वहां पर एक एक बड़ा पत्थर जमीन पर रखा हुआ केवल चलने के लिए सीढ़ियों पर। और उस इमारतों की ऊंचाई और कितने हजार वर्षों से, आज बोलते हैं बिनानी सीमेंट, इसमें जान है। तो इसमें अगर जान है तो कहते किसी व्यक्ति के मुंह में क्या डालना चाहिए मरते हुए समय, तो कहते जो मर गया तो उसमें बिनानी सीमेंट डाल दो, क्योंकि उसमें जान है, वो जिंदा हो जाएगा। हमारे फिल्म स्टार्स सीमेंट की जब ऐड करते हैं तो कहते हैं कि ये शताब्दी तक चलेगा, एक शताब्दी तक। हम देखते हैं कि एक शताब्दी, 100 के अंदर ही 3-4 पीढ़ियां बदल जाती हैं आजकल लोगों की। और 100 वर्षों तक कोई सोच के चलाता भी नहीं है, मकान बनाता है क्या 100 वर्षों तक चलेगा? बनाते नहीं, उसको मालूम है मैंने इतना रहना ही नहीं है, मेरा बेटा और मेरा मिला के 50-55 साल बस। तो 100 साल वाला सीमेंट चाहिए नहीं लोगों को। और जो पत्थर वो लगा के 1600-1700 साल, 3-3 हजार साल पुराने मंदिर खड़े हुए हैं आज तक, और जिसमें हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और दर्शन करते हैं श्री राधा राधिकारम भगवान की, कृष्ण बलराम की जगह, इतनी भारी संख्या में जाते हैं लोग। यहाँ तो थोड़े से किसी मंदिर में इकट्ठे हो जाए तो स्टैम्पेड हो जाता है, इतनी भारी भरकम संख्या को वो मंदिर एकोमोलेट करते थे लोगों को। प्रसाद का एरिया अलग, दर्शन का एरिया अलग, इस प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई थी। इस प्रकार के योद्धा रहे हैं क्षत्रिय लोग, क्या करते थे, जो कहते हैं आज इनकी अगर तलवारें उनके म्यूजियम में देखने जाएं तो दो लोग उठाते हैं, उधर से उठाओ तुम इधर से उठाओ, तो वो एक तलवार को एक जगह से सफाई के लिए हिलाते हैं। और कहते हैं इतनी बड़ी तलवार को वो हाथ से चलाया करते थे ऐसे, और मना करते थे लोगों को। किसी ने बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान जी का या उस तरह का जो उनको पहनाया गया था ना कॉस्ट्यूम, तो कहते हैं वो इतना भारी था, इतना कवच इतना भारी था कि, क्योंकि सामने वाले की तलवार भी बड़ी हैवी हुआ करती थी, तो इतनी बड़ी हैवी तलवार को झेल सके ऐसा कवच हुआ करता था। तो अगर किसी ने पहन लिया तो उसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते थे। सर 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 आपका सीन है सर, उसको खड़ा करते थे ऐसे करके, कहते क्या सीन है बताओ, और गिर जाए तो फिर और मुश्किल। ब्राह्मण लोग इतने वो हुआ करते थे तीक्ष्ण बुद्धि के, इससे पिछले की बात कर रहे हैं, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे हम लोग। हम देखते हैं कि जैसे चाणक्य पंडित जी के विषय में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं और ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे जो सब कुछ स्मरण कर लेते थे सारी चीज़ों को। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में दिखाया भी इस तरह की चीज़ों को। तो हम देखते हैं कि अभी इस तरह की घटनाएं अगर कोई एक आदि हो जाए तो हम अचंभित रहते हैं, आश्चर्यजनक, ये कैसे हो सकता है। उसको जैसे हमने वीडियो में देखे थे, कौटिल्य नाम का बच्चा है, उसको सब कुछ याद रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तीक्ष्ण बुद्धि एकदम। तो हमारे लिए वो आश्चर्य होता है, 7 अरब की जनसंख्या में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो हर चीज़ बहुत सुंदर ढंग से याद रखता है और बताता है, हर एक देश की पॉपुलेशन, उसका वर्ग एरिया कितना है, सब कुछ बताया था। अजूबा लगता है, लेकिन आप सोचिए जब पहले लोग ऐसे ही हुआ करते थे सारे, सब कुछ याद रहा करता था, तीक्ष्ण बुद्धि के हुआ करते थे। तो हम थोड़ा से पहले चलते हैं पीछे, श्रुतिधर जब लोग हुआ करते थे, सब कुछ बोलते थे वो याद हो जाता था। इससे पिछले युगों में की बात करें, यहाँ जहाँ पर आज बात की जा रही है कि एक छींक मारी मनु जी ने, हम कितनी छींक मारते हैं, कुछ निकलता है, गंध निकलता है ना। मनु जी ने छींक मारी और इश्वाकु जी पैदा हो गए, प्रकट हो गए। अब वो कोई सोच सकता है, वो कहेंगे भाई इसको बंद कर दो, आजकल के लोग कहेंगे इसको बंद ही कर दो, विश्वास नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कुछ छींक मारे और बच्चा पैदा हो जाए। और भी घटनाएं हैं इतिहास में जी, और किसी ने भी छींक मारी थी कभी? हाँ, ब्रह्मा जी ने भी छींक मारी थी। और कौन प्रकट हुए थे? वराह प्रकट हुए थे, भगवान वराह। और किसने कुछ किया था ऐसा? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव प्रकट हुए थे रोते हुए, छोटे से बालक रोते ही पूछने लगे, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ रहूंगा, कौन जगह मेरी, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम्हारा नाम, और 11 स्थान दिए उनको रहने के लिए। और हाँ जी, अपने बाल को तोड़कर फेंका और असुर पैदा हो गया। आप सोचिए, आज व्यक्ति पूरा मुंडन करा ले कोई पैदा नहीं होगा, जुए खटमल निकलेंगे बालों से, इतनी बुरी स्थिति नहीं। ऐसी शक्ति नहीं है लोगों के अंदर, पवित्रता नहीं है। वो लोग पवित्र हुआ करते थे, शक्तिशाली हुआ करते थे, एक बार जो बोल दिया, शाप जिसे बोलते ना, शाप देते थे, एक बार जो बोल दिया वो होता था। आज जितनी भी घटनाएं घट रही हैं इतिहास में, क्योंकि हर चीज के पीछे रीजन है, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही जो घटित ना हो या शापित ना हो। हम सब लोग शापित हैं संसार में। ब्राह्मण जो थे, जो असुर हुआ करते थे, उनके लिए बोल दिया गया कि वो कलयुग में आके ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म ले लेंगे, जो बचे थे युद्ध में जितने भी असुर। तो आप देखिए, आजकल के ब्राह्मण जो हुआ करते हैं वो असुरों की तरह काम करते हैं। इतना ईर्ष्या द्वेष जाति पाति फैला दिया, और इतना अहंकार, इतना घमंड, कि जो काम असुर नहीं कर सकता था उससे ज्यादा कल्चर खराब कर दिया। तो पुरानी स्थिति, पुराने समय में ये जितनी भी घटनाएं घटी, ब्रह्मा जी के सारे मानस पुत्र हैं। जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से, नाभि कमल से कमल का फूल प्रकट हो रहा है, देखिए। अब इसमें लोगों को शंका होगी, कमल का फूल उधर से क्यों? तो कमल का फूल प्रकट हो रहा है, उस कमल के फूल पर कौन प्रकट हो रहे? ब्रह्मा जी, पहले जीव। और वो ब्रह्मा जी ने फिर जब और आगे प्रजापतियों को प्रकट किया, मानस अपने मन से ही चिंता करके, स्त्री की आवश्यकता नहीं हुई, देखिए, है ना। उस समय का कल्चर या उस समय की शक्तियां ऐसी थी कि आप चिंतन करते थे और चीजें प्रकट होती थी, संतान उत्पन्न होती थी। प्रजापति ने 10,000 बच्चों को पैदा किया एक साथ, है ना। तो ये सारी घटनाएं इस प्रकार हुआ करती थी। और आज अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो हम विश्वास नहीं कर सकते इन सब चीजों पे। इसलिए बोला जाता है कि ग्रंथों को समझने के लिए हमें भक्तों की या गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसमें लिखी बातों को हम लोग समझ सके। भगवान श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में जब पहले ही परपट देते हैं, पहले चैप्टर के पहले श्लोक पर, तो वो ये बोलते हैं कि भक्तों को चाहिए कि वो भक्तों के संरक्षण में रखे इन ग्रंथों को समझे। क्यों? क्योंकि इनमें लिखे हुए वाक्यों को समझने के लिए हमें ऐसे पारदर्शी भक्त लोग चाहिए, या ऐसे तत्ववेता चाहिए जो इनको हमें ठीक ढंग से समझा सके। नहीं तो हमारे एक भी शंका होती है, क्योंकि शंका जब तक रहेगी, डाउट जब तक रहेगा, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। उसको लगेगा कि शास्त्रों की ये बातें तो बिल्कुल बेकार लिखी हैं, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। जबकि भगवान साफ कहते हैं भगवद गीता में कि जो इन ग्रंथों पे या मेरी इंस्ट्रक्शंस पर विश्वास नहीं करता, शंका करता है, तो उसका नाश हो जाएगा। भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं कर रहा तो अटूट विश्वास कैसे होगा? जब व्यक्ति इनको ठीक ढंग से पढ़ेगा और सुनेगा, और भक्तों के संरक्षण में। क्यों विश्वास करना चाहिए इन बातों पर जब हमको लगता है? पहले तो कैसे विश्वास करें ऐसी बातों पर, जबकि इस प्रकार बच्चा प्रकट हुआ, या इस प्रकार बाल तोड़ने से एक असुर प्रकट कर दिया, इस प्रकार की घटनाओं पर। आज हम लोग देखते हैं सारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस चल रहा है, हम सोच ही नहीं सकते बगैर टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसा होता है। हम आज देखते हैं कि हम कहीं पर हाथ लगाते हैं, मशीन चल पड़ती है। आज हम लोग जैसे हम लोग सेमिनार भी देते हैं, उसमें बताते हैं कि जब सैटेलाइट भी छोड़ते हैं तो उसके लिए भी कितना पीछे लोगों की आवश्यकता है, उस सैटेलाइट को छोड़ने के बाद कितनी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, उसके स्पिन को देखना, उसके किस ऑर्बिट पे घूम रहा है, किधर जा रहा है वो, ये सब चीज देखना, उसको कंट्रोल करना वहां से। कितना कुछ करा देते, लेकिन कहां पर कर रहे हैं, इधर बैठकर उधर का कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं वो टेक्नोलॉजी उसी प्रकार के तंत्र मंत्र आज दूसरी लैंग्वेजेस में आकर C++ की लैंग्वेज जावा लैंग्वेज में करकर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स बना लिए हैं और जिसकी वजह से हम लोग वो चीजें करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज उसी तरह के इस्तेमाल हो रही है, मंत्र उसी तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं। युद्ध में जब हुआ करता था युद्ध तो मंत्र पढ़े जाते थे तीर छोड़ने से पहले, और उसके अंदर जैसे तीर ऐसे से, क्योंकि वो इतने सारे आयुध साथ लेकर नहीं चल सकते थे, उनके पास जो तर्कश हुआ करते थे उनसे वरदान मिला होता था, भैया इस तर्कश में आप जितने भी जब जब जो सा चाहोगे स्मरण करोगे वो तीर आ जाएगा, खाली कभी नहीं होगा, वो भरे रहते थे हमेशा। और कितने तीर चला लो, एक एक तीर से हजार हजार तीर निकलेंगे, एक एक तीर से काफी तीर निकलते थे लोगों का वो करते थे। तो ये सारी कुछ समय पहले हुआ करी कुछ, बस ये अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। कितने साल बीते हैं, 5000 साल, और इससे पहले था द्वापर युग। ये सारा महाभारत का युद्ध यही आपके बिल्कुल 500 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, वो स्थान आज भी है कुरुक्षेत्र। एक भक्त ने हमसे पूछा, प्रभु जी हम लोग कैसे करें, दूसरे लोग हमसे पूछते हैं कि ये सच्ची है कि नहीं, घटनाएं किसी ने लिख दी होंगी। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो लिख दिया होगा किसी ने ऐसे। आप देखिए आज तक आपने जितने ग्रंथ पढ़े, जितने नॉवल पढ़े हैं संसार में, उन नॉवल्स का जिस भी व्यक्ति ने लिखा है, कोई स्टोरी लिख दी, कोई कुछ लिख दिया, क्या कभी ऐसा देखा है कि इतने सारे ग्रंथ लिखे हों और उन ग्रंथों में जो डिस्क्रिप्शन यहां दी जा रही है अगर उस तरह से मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन दूसरे में भी मिलेगी और आपस में कनेक्टिविटी मिलेगी, समझ पा रहे हैं? जो बात आज यहां की जा रही है उसका रीजन दूसरे ग्रंथ में मिल जाएगा, क्योंकि जब कोई बात किसी को समझाई जाती है तो उस समय उसकी बात का उत्तर दिया जाता है, ना कि उससे संबंधित चीजों की व्याख्या की जाती है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो जब कोई बात समझाई जाती है तो कोई और ग्रंथ पढ़ने में पता चलता है ये बात क्यों कही गई, और किसी जगह पर रीजन मिलता है उसका। तो ये सारी घटनाएं क्यों क्यों विश्वास करना चाहिए फिर इन ग्रंथों पर, इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें लिखी सभी बातें आज भी पूर्ण हो रही हैं, और जब पहले लिखी गई थी तो उसके बाद भी पूर्ण हुई। ये इतिहास है, और इतिहास मतलब चार वेदों में भी, ऋग्वेद में और अन्य वेदों में भी, इन ऋषियों का, इन मुनियों का, अंगिरा ऋषि का, गौतम ऋषि का, इन सबके नाम है, इनके द्वारा ऑथराइज किया गया वेदास के द्वारा भी। और पुराणों में जिन लोगों का वेदास में भी नाम है, पुराणों में उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप है, हिस्ट्री है ये। और इन हिस्ट्रीज में हम लोगों को वो सारी चीजें पता चलती हैं जो वेदों में शिक्षा दी गई है, जो भगवान की शिक्षा है, जिन ऋषि मुनियों ने उसको अपने जीवन में उतारा, या उतारते वक्त उन यज्ञ तपस्याओं को करते वक्त जो व्यवधान आए, जब असुरों ने उसको व्यवधान डाले, या जब धर्म की अधर्म के साथ लड़ाई हुई, तो प्रैक्टिकली उन ऋषियों मुनियों ने क्या किया, उन राजाओं ने, उन राज ऋषियों ने क्या किया ऐसे वक्त। कहीं पर कुछ लोग फेल हुए तो उससे भी टीचिंग है, कहीं पर लोग जीत गए तो उससे भी टीचिंग है। तो पूरा महाभारत हो या रामायण हो या अन्य ग्रंथ हो, उस इतिहास से हमें पता चलता है कि धर्म का पालन कब कब किस किस स्थिति में कैसे करना चाहिए। तो हम देखते हैं जितना भी इतिहास हमें हमने पढ़ा उसमें जो प्रिडिक्शंस हुई जो हम उन पुस्तकों में देखते हैं, आज वो भी पूरी हो रही है। और वो पूरी हो रही ही है इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हम लोग अपने टीचिंग्स अकॉर्डिंगली, मॉडर्न साइंटिस्ट भी कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार उनकी प्रिडिक्शन भी पूरी नहीं होती। वो कई कितनी बार डेट्स दे दी है कि 2010 में खत्म होने वाला है सारा संसार, 12 में हो जाएगा, 14 में तो होने ही होना है, 18 में हो जाएगा, या 2022 में अब ऐसा कुछ टकराने वाला है पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, निकल जाती डेट। फिर कोई ना कोई रीजन देते हैं, थोड़ी हवा उस तरफ की चल गई तो वो इधर मुड़ गया वो, या कुछ ऐसा हो गया वैसा, कुछ ना कुछ रीजन देते हैं। और हमारे पास रीजन है इसका, 4,32,000 की एज है कलयुग की, तब तक रहेगा। एक दिन मैंने फोन उठाया और मुझे पता चला कि मुझे किसी व्यक्ति ने एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया जिसमें सारे के सारे PhDs IIT कानपुर से और अन्य PhDs जिन्होंने बड़ी बड़ी थीसिस लिखी हैं बहुत बड़े बड़े, और उस ग्रुप का नाम था एनवायरमेंट एंड पीस फॉर्मूला फॉर करंट एज समथिंग ऐसा। तो मुझे लगा मुझे क्यों डाल दिया इसमें, मेरे को क्विट करना था, बट मैंने जब उनकी कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी तो मुझे लगा अच्छा ये पीस चाहते हैं, ये एनवायरमेंट शुड चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाल दिया स्पिरिचुअल उसमें। अब टेक्निकल लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, तो क्वेश्चन आ गया एकदम, एक स्पिरिचुअल होने की जरूरत है क्या? तो मैंने कहा इट्स द नेचर ऑफ सोल टू बी स्पिरिचुअल, उसकी खुराक है वो। तो उन्होंने कहा तो उसका ब्रेन से क्या कनेक्शन है? मैंने कहा क्या क्वेश्चन आ गया, सोल का ब्रेन से क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ब्रेन तब तक काम करता था तो सोल शरीर में। कहते बट हाउ ब्रेन यू नो डील्स विद द कॉन्शियसनेस। फिर मैंने और जवाब दिए, मैंने कहा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, नंबर दे दिया। मैंने कहा इसमें कहाँ करूँ क्योंकि ग्रुप में तो और लोग भी पढ़ रहे हैं। तो कहते जी मैंने IIT कानपुर से मैंने PhD किया है और मेरी कॉन्शियसनेस पे और मेरी ये थीसिस है, मेरी ये बुक है, और फिर ये फंक्शन कैसे करता है। मैंने कहा सब भगवत गीता में लिखा है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे सच में बात करना चाहूँगा इस विषय पे और भी। मैंने कहा करिएगा। तो कहते मैं PhD हूँ। मैंने कहा हाँ, मेरे पास भी 10 IIT कानपुर के लोग कनेक्टेड हैं, 3 प्रोफेसर हैं जिन्होंने PhD करी है, कॉन्शियस पे करी है, इस पे करी है, दे ऑल आर माई स्टूडेंट। उसके बाद और लोगों के जवाब आने लगे कि हाँ सर बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, और वीडियोस भेजिए। तो कहने का क्या मतलब है कि हम लोग जिस प्रेजेंट सिनेरियो में हैं, जो हमारी स्टडीज़ हैं, नो डाउट कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने से हम लोग इन रिसर्च कर करके बहुत सारी खोज कर लेते हैं। ऑब्वियसली संसार बनाए भगवान ने ऐसे हर एक को एंगेज रखना है, तो जिनके पास ज़्यादा दिमाग है उनको भी दे रखा है तुम यहीं लगे रहो और है कुछ नहीं। फिर मैंने उनको आखिरी में ये भी बोला जब उसने बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन करना शुरू करे, मैं कहा भाई ऐसा है चाहे तुम्हारा ब्रेन ये तुम्हारी जो थीसिस है तुम्हारा ये है, ये आत्मा के निकलने से ये खत्म हो जाता है। तुमसे पहले भी लोग आए जो थीसिस लिख गए और जो इन पर कॉन्शियसनेस पर ये सब कर गए, आज भी कर रहे हैं कल भी करेंगे, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसमें से जब ये आत्मा निकल जाएगी ना तो हमारी सारी डिग्रीज और हमारी सारी चीज़ें किताब पड़ी रह जाती हैं। तो इस पर भी खूब ढाके लगे, इस पर भी कई लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा बोला कि भाई लोग काम खत्म ही कर दिया है ना। तो अब जो भगवान ने दिया, अर्जुन की स्थिति देखिए, अर्जुन कितना डिप्रेस था, कितना परेशान था, गांडीव तक छूटा जा रहा था, वेपन छूटे जा रहे थे, लड़ना था, स्थिति क्या थी। तो भगवान ने शुरुआत कहां से करी, सीधा आत्मा के ज्ञान से एकदम टक्कर मारी सीधा। भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर के अंदर हो आत्मा जो कभी मरता नहीं है, तुम जिसको मारने वाले वो भी नहीं मरने वाला, वो शरीर छोड़ेगा। वो एकदम उसको आत्मा के स्तर पर लाके समझाना शुरू। तो इतनी टेक्निकल बातें, इतनी सारी चीज़ें। फिर मैंने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट से एक कोट एक वो निकाला बड़ा सा, किसी भक्त साइंटिस्ट का रिसर्च, और वो मैंने वहाँ जाके पेस्ट कर दिया। मैं कह लो भैया इसको पढ़ लो, ब्रेन है ना, ब्रेन उनको चाहिए कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति को एंगेजमेंट चाहिए। उनको ऐसी टेक्निकल बातें कर करके कॉन्शियसनेस के अंदर घुस के इतने चीज़ें को डिस्कशन करने के बाद कुछ रिलीफ महसूस होता है, यस वी अचीव समथिंग। और अल्टीमेटली अचीवमेंट की सेंस को फील करते करते व्यक्ति की वो फील निकल जाती है और तो खत्म हो जाता देखते। तो हम लोगों को जो भक्त लोग हैं और उस एनवायरनमेंट में पढ़े लिखे हैं, वही सब किताबें हमने भी पढ़ी हैं, हमारे बच्चों को भी पढ़नी पड़ती है, उन्हीं स्कूल्स में जाना पड़ता है। और नकली किताबें, नकली थीसिस, नकली चीजों पर, मटेरियल चीजों पर डिस्कशन चल रहा है, खाली सारा का सारा 5 elements का लेना देना है। और जो ज्यादा एडवांस है, जिनके पास ज्यादा ब्रेन है, वो थोड़ा सा माइंड और ब्रेन तक की भी बात कर लेते, सटल बॉडी तक की भी बात कर लेते, इनके रिएक्शन एक्शन, इनके आपस के अंदर क्या लिंक है, कैसे काम करता है, बस इसमें दिमाग लगाते हैं। और जितनी भी रिसर्च होती हैं, जिस चीज को भी लेकर होती है, जो रिसर्च हो गई, जो डेवलपमेंट हो गया, जो मशीनरी बन गई जिसका यूज करने लगे, उससे होने वाले दुष्परिणामों पर अब फिर रिसर्च चल रही है। पहले आप कुछ क्रिएट करते हो, फिर उसको आप यूजेस में लाते हो, फिर उससे होने वाले नुकसान पे डिस्कशन करते हो, फिर उनके होने वाले नुकसान के ऊपर डिस्कशन और रिसर्च करके फिर उनके लिए कुछ लेकर आते हो, सॉल्यूशंस, फिर उन होने वाले सॉल्यूशन से, उन सॉल्यूशन को कोई नहीं मानता क्योंकि अब आदतें पुरानी लग गई हैं, फिर कुछ लोग मानने की कोशिश करते हैं, फिर उससे होने वाले नुकसान के ऊपर फिर आप नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हो संभालने के लिए। तो ये बस क्या है, अंगेज किया हुआ माया ने सबको, हर हाथ में काम दे रखा है भैया, हर तरह का ब्रेन है यहां पर, तुम लगे रहो बस। और इस प्रकार व्यक्ति अपना समय व्यतीत कर रहा है, समय बढ़ रहा है, नहीं पता उसको आयु हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसो। भैया रोज सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हमारी आयु घट रही है, उत्तम श्लोक वार्ता, लेकिन जो समय उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की वार्ता में निकल जाए, उनके स्मरण में निकल जाए, वो तो कहते हैं आयु से भी नहीं घटता वो समय। इसलिए भक्ति या ये ज्ञान विरलों को ही प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी लोग जो है ना मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं और भगवान परमात्मा है, इतनी अच्छी रियलाइजेशन पे पहुंच गए, तो दे आर वेरी क्लोज टू मी नाउ। इसलिए बोला बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत ही दुर्लभ ऐसा महात्मा जो बहुनाम जन्म, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते, वो ये जब समझ जाता है, ये जान जाता है क्या वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। ऐसी चेतना हो जाती है उसको, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है सभी कारणों के कारण है। ऐसा ज्ञान होने पे भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। अन्यथा हम देखते हैं एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अलग अलग, एक ही टीचर से पढ़े अलग अलग फ्यूचर हो गया उनका, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, किसी का स्केल ज़्यादा किसी का कम, किसी ने पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर लिया, कोई आज सबसे ऊंचे पद पर है और जो नहीं पढ़ पाए कुछ हुआ वो कुछ अलग स्थिति में चले गए। मुझे एक मैसेज के द्वारा बताया, एक SDM है हमारे IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने मैसेज भेजा, कहा तीन लोग खास दोस्त एक ही बैच के एक ही स्कूल के, उनमें से एक बन गया जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, IIT करा उसने और उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट पर लगा इसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग गया। दूसरा जो एवरेज था उसने बाद में MBA कर लिया और वो उसी कंपनी में या उसी राज्य में कुछ दूसरी पोस्ट पर लगा। और कहते हैं जो एम ही रह गया, नहीं आगे बढ़ पाया ज़्यादा, वो कहते हैं फिर वो नेताओं के टच में आ गया और बाद में उसको टिकट मिल गया, पिछले 5 बार से मतलब 25 साल से वो MP है, सारे उनके अंडर में था, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति की गति अलग हो जाती है, हर व्यक्ति अपना कर्म लिखा कर आया, लेकिन हर चीज का रीजन अल्टीमेटली फिर फाइनली क्या है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भगवान के द्वारा बनाई गई ये क्रिएशन फॉर द टाइम बीइंग है और हम सब लोग यहां पर लंबे समय तक नहीं रहने वाले, लेकिन जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है भक्तों का संग कर भक्ति कर आगे बढ़ने की, वो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि जिस प्रकार का संग करते हैं उसी प्रकार का रंग चढ़ता है, अगर हमारी यारी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो केवल इस प्रकार के ब्रेन के गेम्स खेलते हैं, बहुत कर्मठ हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो वो संसार में फंसे रह जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भक्तों को कुछ करने दिखाना चाहिए, भक्तों को भी कुछ कर दिखाना चाहिए, उन्हें तो बहुत कुछ कर दिखाना चाहिए, और वो क्या है, उनको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए भगवान को समझने में, तत्व से और आत्म साक्षात्कार करने में। और ये क्रिएशन यहां पर हम जो मर्जी कर लें, ये केवल हमें 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए है। क्या कराने के लिए है? प्रभुपाद जी कहा करते थे इतनी मेहनत कीजिए ताकि शरीर और आत्मा साथ साथ रह सके, 8 घंटे जब हमारे को दिए गए हैं कर्म करने के लिए, तो उसमें पूर्णतः उस पर ध्यान दे के अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म मतलब जो हमारा नियत कर्म है, जो बिजनेस है, जो जॉब है, उसके बाद का समय हमें भगवान को जानने और समझने में लगाना चाहिए। क्या होगा इससे? इससे यह होगा कि हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र खत्म होगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इसके लिए कहीं पर कोई शिक्षा या काउंसलिंग नहीं है संसार भर में। है तो किस लिए? केवल हाउ टू एंजॉय मोर एंड मोर, केवल इसलिए है। इसलिए जो भक्त लोग उस कैटेगरी में आते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्र शिव, हजारों में एक और उसमें भी विरले, उन्हें चाहिए कि वो इस संघ को ना छोड़ें, भक्तों के संघ को ना छोड़ें और इन ग्रंथों को समझना ना छोड़ें। और इस प्रकार के प्रसंग जो आते हैं, जो हम लोगों को लगता है कई बार जो हमारे अंदर संशय पैदा करते हैं, उन्हें भक्तों के मध्य में रहकर सीखना चाहिए कि इस बात को मैं कैसे समझूं। आज से कुछ समय पहले लोग इतने पवित्र थे जो मन से संतान उत्पन्न कर रहे थे, आज वो समय नहीं है। सत्ययुग त्रेता द्वापर से धर्म भी कम होता गया, पवित्रता भी कम होती जा रही है और कलयुग में पूरी तरह से समाप्त होने को है। इसलिए हम लोग उन चीजों को नहीं समझ सकते कि ये कैसे और वो कैसे। वास्तव में तो ग्रंथों में हर बात का आंसर है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ये घटना कैसे वो घटना कैसे। लेकिन जो विश्वास करता है, जिसका फेथ है ग्रंथों पे और भक्तों पे और उनकी वाणी पर, वास्तव में वही आगे बढ़ सकता है। इन इंद्रियों से हम इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि ये भौतिक है, इनकी एक्सपायरी डेट है। शुरू में तेज थी, अच्छी हुई, स्ट्रांग हुई और कुछ समय तक ठीक रहती है, और उसके बाद सारी इंद्रियां हाथ खड़े कर देती है धीरे धीरे। और फिर इन बुद्धि से, इन आंखों से, इस समझ से, जो कि ये भी मटेरियल है, भौतिक बुद्धि हमारी, भौतिक मन हमारा, जिसके अंदर यही पर देखी गई चीजों को, एक्सपीरियंस की गई चीजों का या एक्सपेरिमेंट की गई चीजों का तालमेल देखता रहता है, बस सारा का सारा भगवान की इनफीरियर एनर्जी से निर्मित है। और जो बेचारा आत्मा स्पिरिचुअल स्पार्क है, जो भगवान का अंश है, उसका इन 8 एलिमेंट से भी कोई लेना देना नहीं, तो इस क्रिएशन से कैसे होगा? तो फिर जब ये मटेरियल एलिमेंट्स हमारे पास है, तो इन एलिमेंट से हम लोग कैसे किसी, जब सटल चीजों को देखना इतना मुश्किल है या सटल चीजों को भी समझना इतना मुश्किल है, मन से संबंधित चीजों को रिसर्च हो रही है ना, उन चीजों को समझना मुश्किल है, तो भला हम लोग आत्मा और भगवान को कैसे समझेंगे? नहीं जी, पहले दिखाओ तो मानेंगे, ऐसे कैसे कर सकते हैं? चमड़े की आंख से आप नहीं देख सकते, ये तो ठीक उसी प्रकार है, कोई बोले जी दीवार के पीछे मुझे यहीं से दिखाओ क्या है, तो नहीं देख सकते क्योंकि दीवार है सामने, इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, हम नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते, तो कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानते, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, इन मटीरियल रबड़ की सेंसेस से नहीं समझा जा सकता, इस ब्रेन से नहीं समझा जा सकता। अचिंत, अचिंत क्यों बोला गया भगवान को? क्योंकि इस हमारे चिंतन से परे, हमने जन्मों जन्मों से, लाखों वर्षों से केवल भौतिक चीजें देखी हैं, भौतिक चीजों के बीच में ही रमण किया है, इसलिए वही फीलिंग्स हैं, वही एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम कैसे सटल और सटलेस्ट भगवान को या उन सब चीजों को समझ सकते हैं? ये तो भक्तों की और भगवान की कृपा के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही हम लोग उन्हें समझ सकते हैं। जब हमारा फेथ बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है ऐसी चीजों पर, तब हम रियलाइज करते हैं भगवान की गतिविधियों को, तब हम लोग भगवान के उन क्रियाकलापों को, जिसमें भगवान ने पर्वत उठा लिया था 7 दिन और 7 रातों के लिए, अगासुर का वध किया था, ऐसी लीलाएं फिर व्यक्ति रिलिश करना शुरू करता है, जो पहले क्वेश्चन मार्क लगाकर देखता था हमेशा, ये कैसे हो सकता है या वो कैसे हो सकता है। और इस प्रकार का सरेंडर और इस प्रकार का फेथ व्यक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। और वो योग्यता क्या है? भक्तों के मध्य में रहना और हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करना। जब हमारी चेतना से, हमारे मन से भौतिक कलमश का धुलाई होना शुरू हो जाती है, तो स्पिरिचुअल चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार एक शीशे में जिसमें धूल मिट्टी लगी है, उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, लेकिन उसको सफाई करने के बाद हम देख पाते हैं, सेल्फ रियलाइज कर पाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा चित्त है, जो हमें आज्ञा नहीं देता या जो जिसकी इतनी अभी पहुंच नहीं है कि वो आध्यात्मिक टॉपिक को समझ सके, तो उसको मदद लेनी पड़ती है भगवान के आध्यात्मिक नामों की और भक्तों की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन तत्वों को समझने के लिए इस मंत्र का जप करना जरूरी है और भक्तों का संग करना जरूरी है। क्योंकि बहुवाक्य बताते, अगर बहुवाक्य बहुत वाक्य सुन लिए, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन शरणागत रहकर न पढ़ पाए, तो वही ग्रंथ हम लोगों को बहुत से क्वेश्चन खड़े कर देंगे। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं दूसरे धर्मों में भी जो हमारे ग्रंथ पढ़कर हमें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं या ये बताने की कोशिश करते हैं, देखो तुम्हारे ग्रंथ में तो ये लिखा है, तुम्हारे ग्रंथ में यहां पर ये लिखा है, नहीं समझ आया। यहां तक कि वो लोग जो फेथलेस हैं, जो प्रमाणिक गुरु या प्रमाणिक भक्तों के मध्य में रहकर, के शेल्टर में रहकर नहीं सीखते पढ़ते, वही लोग नई नई रीतियां, नई नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देते हैं इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर, अलग एक रास्ता निकाल लेते हैं, या फिर भगवान के उन क्रियाकलापों को गलत बताना शुरू कर देते हैं, या फिर निराकार पे ही पूरा फोर्स दे देते कि सब कुछ बस निराकार ही है इन्हीं ग्रंथों से पढ़कर। लेकिन जब भक्तों के संरक्षण में रहकर पढ़ते हैं तो पता चलता नहीं, भगवान निराकार भी हैं, भगवान परमात्मा रूप में हरे के हृदय में भी हैं और भगवान साकार भी हैं, तीनों तत्व तो समझता है। और इस प्रकार भगवान की भक्ति करता हुआ व्यक्ति भगवान को रियलाइज करता है, और रियलाइज करने के बाद जब उनकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो शुद्ध इंद्रियों से भगवान का दर्शन भी कर पाता है। मटेरियल सेंसेस के लिए भगवान अपने अर्च विग्रहों के रूप में सामने हैं हमारी सेवाओं को लेने के लिए। तो जब हम इनकी सेवा करते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश, इन इंद्रियों से जब पूर्ण भगवान की सेवा में लगते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं, हरि नाम के द्वारा मन शुद्ध होता है, और भगवत गीता और भक्तों के संघ के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, तब जाके हम लोग इन आध्यात्मिक टॉपिक्स को समझ पाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा? यस, हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, माइक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ जैसे कि आप आत्मा और शरीर के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, और कुछ जैसे जब से मैंने इस्कॉन मेंट्री किया है, हम शुरू से ही सुन रहे हैं 10-12 साल से कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम इस चीज़ को पूर्णतः कैसे रियलाइज करें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अभी अपने आप
देहात स्तर पर करते हैं,
कर ही कर रहे हैं जो
भी है। प्रभु जी कह रहे हैं कि हम 10-12 साल से आ रहे हैं, शरीर और आत्मा का सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी रियलाइज नहीं कर पाते, काम देहात में बुद्धि पे ही रहते हैं, तो कैसे रियलाइज करें इस बात को? हमेशा ज्ञान में बने रहने का मतलब, ज्ञान में बने रहना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये है कि मैं शरीर के अंदर आत्मा हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, ये शरीर टेम्प्रेरी है। और इस ज्ञान के आधार पर हम लोग जितनी देर तक इसका स्मरण करेंगे तब तक हम लोग देह से संबंधित चीज़ों का या उसमें आने वाली समस्याओं से बचे रहेंगे। जैसे ही मैं ये मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो वो सारी समस्याएं फिर मेरी बन जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों के बीच में रहें, वो भक्त लोग जो आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, प्रयास में हैं, और कर्म भी आत्म साक्षात्कार के आधार पर करते हैं, उनकी क्रियाएं, जैसे जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है या कर रहा है उसके क्रियाकलाप देखिए। जो आत्मा के स्तर पर है उसको संसार के दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको कोई व्यक्ति प्रवोक करेगा या उसको कोई अपशब्द कहेगा या मान या सम्मान देगा या अपमान करेगा तो भी वो क्या रहेगा, संभाव रहेगा। उसको पता है कि ये शब्द मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, ये अपमान मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, ये दुख मेरे शरीर का है आत्मा का नहीं है, ये सारी चीजें में वो क्या रहेगा, संभाव रहेगा। प्रयास कर सकता है, अरे दुख आ गया, शरीर पे चोट लग गई, ठीक है वो जाके डॉक्टर के पास जाके ठीक करा लेगा। सुख आ गया उसको भी सहन कर लेगा कि ठीक है मेरे कर्मों के हिसाब से आ गया, लेकिन कर्तव्य देखकर, उसके कर्मों को देखकर हम लोग ये सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार संभाव है हर चीज में। अधिक मिलने पर भी बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और सब कुछ चले जाने पर भी दुखी नहीं होता, ठीक है ना? तो आत्म साक्षात्कार को करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए ऐसे भक्तों के मध्य में रह गया। और फिर यहां तक बताया गया है कि लोगों को जो है इसलिए भी कई बार रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है हमेशा, या फिर अपने कामों में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि उसके सुख दुख लाभ और हानि के मध्य में ही रहता है, उसका मन वहीं रहता है, तो फिर कैसे रियलाइज करेगा। तो इसलिए जब जब हम लोगों को ऐसा इन्विटेशन आता है या पता चलता है कि कोई हमारे बीच का व्यक्ति चला गया, उसकी आत्मा निकल गई, दिवंगत हो गया वो, तो जाना चाहिए ऐसे शमशान घाट में। हम सोचते जाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, कौन जाए बाद में देख लेंगे। तो शमशान घाट हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। यहां पर है ना पंजाबी वाक्य शमशान घाट, एक बार शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था कि मंजिल तो यही है, लोग रास्ता भटक गए। जब कोई व्यक्ति जहां पर जाना है वहां ना जाकर अगर रास्ता भटक गया हो तो घूमता रहता ना इधर उधर, तो वास्तव में बात तो ठीक है, आना तो रुक तो इधर ही है, अभी क्या है रास्ता भटका हुआ है कि नहीं। तो जब शमशान जैसी जगहों पर जाते हैं तो तुरंत वैराग्य आता है, वो ये भी चला गया, कल तो ठीक था, क्या लेकर गया यार बताओ, तुरंत व्यक्ति को सुधारा गया। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति ऐसे महान भक्त से मिलने के लिए गया जो सेल्फ रियलाइज था, जो हमेशा आत्मा के स्तर पर जीवन जीता था, बड़ा नाम सुना था, उसको भी लगा कि मैं भी करना चाहता हूं ये, तो गया उसके घर पर, उसके बारे में बड़ा सुना था, मस्तक चमकता है, ज्ञान से भरपूर है। उसकी पत्नी घर पे मिली, कहा जी मैं स्वामी जी से मिलने आया हूं, मैंने बड़ा नाम सुना उनका और अभी मिलना है तुरंत। कहती तुरंत तो नहीं है, अभी दूर कहीं गांव में गए हैं, कोई मर गया था तो शमशान गए हैं। कहती अच्छा, कहते मैं शमशान में जाके मिल लूंगा, मुझे बताओ उनका कोई मोबाइल नंबर दो। कहते आज से 500 साल पहले मोबाइल तो होते नहीं थे, तो कहते मोबाइल तो नहीं है। कहते कुछ और, कहते और कुछ नहीं है, आप एक काम करना, कैसे पहचानूंगा उनको। कहते आप उनको देखे होगे ना, तो उनका मस्तक दिव्य ज्ञान की तेज से हमेशा चमकता है, ये पहचान है उनकी। तुरंत भागते हुए शमशान पहुंच गए, अग्नि इत्यादि दे दी गई थी, तो भाग उन्होंने देखा कि सारे लोग जो अंदर से बाहर आ रहे हैं सबके मस्तक चमक रहे हैं। कहते इसमें मैं उनको कैसे पहचानूं, इतने सारे मेरे को आज आत्म साक्षात्कार के लोग मिल गए। तो जो है बड़ा कंफ्यूज हुआ, और फिर देखा धीरे धीरे जिनका सबका तेज था वो धीरे धीरे कम होने लगा, वीक होने लगा, और आखिर में सबका तेज खत्म हो गया बाहर आते आते, और केवल एक ही व्यक्ति का मस्तक अभी भी तेज था। वो उनके चरणों में पड़ गया कि महाराज मैं बड़े दूर गांव से आया था आपका दर्शन करने के लिए, आपकी पत्नी ने कहा आप यहां हो, और उन्होंने बोला कि आपकी पहचान चमकते हुए मस्तक से करनी है जिनका आत्म साक्षात्कार हो गया है। कहते हाँ तो बोलो। कहते मैं प्रश्न बाद में पूछूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ आपकी वाइफ ने कहा था एक व्यक्ति हो गया तो सबके मस्तक चमक रहे थे, ये क्या मतलब है, और बाद में धीरे धीरे डिम हो गए आपके चमक रहा। कहते एक्चुअली क्या है, शमशान में आकर हर व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। जब तक शमशान में रहता याद रहता है कि एक दिन कुछ नहीं जाना, एक दिन सब चला जाना है, ये शरीर नश्वर है, पिंकू चला गया, टोनी चला गया, मोनू चला गया, डिग्री नहीं ले गया, प्रॉपर्टी नहीं ले गया, कुछ नहीं ले गया, एक दिन मुझे भी जाना है, सबको आत्म साक्षात, सबका मस्तक चमकता है। कहते फिर क्या बुझ क्यों गया। कहते जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं ना, काम याद आ जाते हैं, फोन याद आ जाता है, हाँ जी माल आया कि नहीं आया, पेमेंट आई कि नहीं आई, तो इसलिए इनका मस्तक फिर इनको देहात्म बुद्धि में आने के कारण मस्तक फिर खराब हो गया इनका, और क्योंकि मुझे याद है अभी भी इसलिए मेरा मस्तक चमक रहा है। तो हमें क्या करना है, शमशान जाना है। ठीक है जी, और कोई प्रश्न किसी का। हाँ जी माइक।
वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे हम अपने ऑफिस में काम करते हैं लोग, देर कुड बी टाइम्स व्हेन दे आर वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर डिफिकल्ट, तो इफ योर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स टू गेट अफेक्टेड, क्या हम इसको समझें कि वी मस्ट गो थ्रू दिस फेज as is written in 10:14:8 to bear with all the circumstances, or should we say no, it's time to shift to keep your sanity and spirituality together? Should we continue to suffer or should we shift?
प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सब लोगों को मदद करेगा। प्रभु जी ने प्रश्न किया कि कई बार ऑफिस में ऐसा होता है कि हम लोगों को बड़ा तनाव हो जाता है, काम से, कलीग से चैलेंजेस मिलते हैं, तो और कई बार हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी भक्ति भी इफेक्ट करती है ऐसे समय, तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर खड़े बैठे रहें, सहन करते रहें, या छोड़ दें, या कुछ भी ऐसा क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? हर एक की परिस्थिति अलग होती है। एक तो पूर्व जन्म के कर्म हैं जो हमने करे हैं, तो हमारे सामने दूसरे लोगों के द्वारा वो उतारे जाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया था? तो कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। नंबर एक, जो भी सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं या जो भी हमें दुख दे रहे हैं, परेशान करते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक, हमारे पूर्व जन्म में हमने हो सकता है कई लोगों को तनाव दिया हो, मानसिक तनाव, परेशान किया हो या शारीरिक दुख दिया हो, तो अब ऐसा समय है कि जब वो हम लोगों का उस कर्म का बोझ उतार रहे हैं, उस परिवार में आकर, चाहे वो हमारे घर के संबंधी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माता पिता हो, या हमारे वाइफ या हस्बैंड हो, या हमारे ऑफिस के कलीग्स हो, क्लासमेट्स हो, ये हमारे तनाव को कम कर रहे हैं, बल्कि हमारे बोझ को कम कर रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि हमारी ही कुछ गलती हो, हम इतने स्किलफुल ना हो, हम इतने सेंसिटिव ना हो, हम भी गलतियां करते हो, लेकिन हम ये सोचते हो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये किसी तीसरे व्यक्ति से पूछिए, या कभी उसी के पास जाके पूछिए कि आप मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर क्या ऐसी गलती है, मैं क्या चीज ऐसी ठीक करूं जिससे मैं आपका, हमारा संबंध ठीक हो जाए। फिर पता चलेगा हाँ, उन्होंने 10 चीजें बताई जिसमें से 4 बिल्कुल ठीक थी। 4 में से एक ये थी कि आप जब भी कमरे के अंदर एंटर करते हो दरवाजा जोर से मारते हो। दूसरा, आप जब भी हम लंच पे बैठते हैं तो आप जो है अपनी कोई फालतू की दूसरी बात करना शुरू कर देते हो। तीसरा, जब आपका खुद को काम मिलता है वो काम आप दूसरों में दे देते हो, पूरा खुद करके नहीं जाते। चौथा, आप जो गाड़ी पार्क करते हो वहीं पर करते हो जहां मैं करता हूं, और मेरी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलता, एकदम चिपका के खड़ी करते हो। तो बात चार चीज ठीक होगी, बाकी 6 में पता चलेगा बातचीत करके ठीक हो गया। तो जो चीज बातचीत करके ठीक हो जाए तो अच्छा है। फिर कई कारण क्या होता है कि हमारे जो पूर्व जन्म की दिक्कतें थी वो खत्म भी तो होनी चाहिए कि नहीं? अगर ये अटकी रह जाएंगी तो बार बार जन्म मिलेगा उनको लेने के लिए। इसलिए जो हम लोगों को कष्ट दे रहा है या हम लोगों को परेशान कर रहा है, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि ये मेरे कर्मों को उतार रहा है। उसे ईर्ष्या या द्वेष या प्रतिकार नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, और पूरी गीता में उनको दिखाया भी सब कुछ, कि केवल 5 ही बचेंगे सब खत्म हो जाएंगे, विजय तुम्हारी है, आत्मा हो तुम, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहा, दुख और सुख, गर्मी और सर्दी के समान है, ये आएंगे, आगम अपायनो अनित्य, अनित्य है। तान तितिक्ष्व भारत, हे अर्जुन, हे भारत, इसको सहन करना सीख लो। किस किस को सहन करना है? दुख को भी सहन करना है और सुख को भी सहन करना है। फिर अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी भक्ति पर बाधा पड़ रही है, कुछ लोग हमें परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि मैं जप नहीं कर पाता, मैं घर से मैं लेट पहुंचता हूं, मुझे जानबूझ के टॉर्चर किया जाता है कि आप 3 घंटे और रुकिए, या फिर इतना तनाव दे दिया जाता है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, सहन करना चाहता हूं बट नहीं कर पा रहा हूं। तो तरीका है इसका अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। एक कि प्रयास करें पहले तनाव कम हो जाए, बॉस से बात करें, मैनेजर से बात करें, डिपार्टमेंट हेड से बात करें, एक बार करें, दो बार, कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए, विनम्र भाव से, द्वेष की भावना से नहीं, विनम्र भाव से, कि सर पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूं कि प्रभु इनका और मेरा संबंध ठीक नहीं है, इन्होंने मुझे इन इन बातों पर ऐसा ऐसा बोला, मैं चाहता हूं कि ये मुझे क्लियर करें कि किन बातों पर ऐसा बोल रहे हैं, क्या ऐसी चीजें जो मुझे, मैं इनको दुख दे रहा हूं, ताकि सेटल हो, ताकि हम लोग अच्छा काम कर सके, अच्छे मित्र बन सके। एक कह सकते हैं एक प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलना सर इसको मैं बाहर निकलवा दूंगा, इसको मैं नौकरी से निकलवा दूंगा, या मैं 2 बंदे सुपारी दे दूंगा किसी को, उसको रास्ते से हटा दूंगा, ऐसे नहीं। तो विनम्रता से बात करें। और फिर अगर, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी वो हो रही है, तो प्रयास करें कि उस जॉब को या उस स्थान को छोड़ने का और एक ऐसे स्थान पर जाने का प्रयास करें, जैसे हमारे को जब शरीर पर दुख हो जाता है, मैं सहन करता रहूं दुख है दुख है तो नुकसान रहेगा कि मैं ना चल पाऊंगा, ना मैं मंदिर जा पाऊंगा, ना मैं जप कर पाऊंगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक डॉक्टर के पास गए ठीक नहीं कर पाया तो हमें क्या देखना चाहिए, अरे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, शायद मेरा कर्म ही होगा। हाँ कर्म हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूं इसको दूसरे डॉक्टर के पास जाकर ठीक कराने का, तीसरे के पास भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रारब्ध है, लेकिन निकलना तो प्रयास करना है ना, ताकि मैं अच्छे ढंग से अच्छे मन से जप कर सकूं। उसी प्रकार जो मेरा कार्य क्षेत्र है, अगर मुझे इतना तनाव दे रहा है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति ढूंढनी चाहिए जहां पर मैं कंफर्टेबल जब कर सकूं, ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी जॉब या ऐसा ट्रांसफर लेना चाहिए ताकि मैं अपना जीवन भी यापन कर सकूं और बदली। ऐसे नहीं कि ठीक है आज बोला था तो मैंने नौकरी छोड़ दी, जाओ तुम मेरे मालिक बनने लायक नहीं हो, ऐसा नहीं, फिर वो आने वाले दिन परेशानी वाले दिन होंगे। तो जैसे हम चलते वक्त एक कदम तब उठाते हैं जब पहला कदम स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमानी से काम करें कि कहाँ जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए कि मेरी भक्ति भी ठीक रहे, मानसिक तनाव भी कम रहे और दूसरों के प्रति मेरी ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शीला प्रभुपाद की।